मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 30 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज के मुख्य विषय के तहत मैं किस विषय पर बात करूंगा, और अगर आपने अंदाजा नहीं लगाया हो, जैसा कि डेली मैं बताता ही हूं तो आप शायद एडवांस में न लगाते हों, तो आज जरा लगा करके देखिए कि मुख्य विषय के अंतर्गत कौन सा विषय होना चाहिए, राइट। तो यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है, अखबारों में दिया हुआ है। अनलॉक 3 की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई भी अनलॉक की खबर आती है तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो थोड़ा सा बंधा हुआ था, जो कसा हुआ था, वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है ये सुनकर के ठीक है अब जिम के सेंटर खुल जाएंगे, जो योगा सेंटर हैं वो भी 5 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंध बने रहेंगे, लेकिन कम से कम ये तो खुल रहा है, तो ये थोड़ी सी राहत पहुंचा देता है। अखबारों में आज इसके बारे में दिया हुआ है, उस पर चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं, लेकिन एक जो बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि वो ये कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे, और अभी जो डेट दी गई है वो अगस्त लास्ट तक की डेट दी गई है। आगे देखते हैं जैसी सिचुएशन होगी उस तरह से सरकार डिसीजन लेगी। दोस्तों, एक खबर उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, और वो ये है कि तीसरा मंगलयान जो अमेरिका का है, जिसका नाम है परसेवरेंस, वो आज छोड़ा जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए कभी कभी कुछ ऐसे इत्तफाक होते हैं कि मंगल ग्रह पर इस जुलाई के महीने में छोड़ा जाने वाला यह तीसरा यान है। एक ही महीने में 3 यान और तीनों के तीनों मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने खासकर जो यूनाइटेड स्टेट अमीरात है UAE, उसने जो यान छोड़ा था उसकी बात की थी। उसका नाम था अल अमल, जिसका आप कह लीजिए हिंदी में अनुवाद होगा आशा, इंग्लिश में होगा होप। ये मंगलयान उसने छोड़ा था जापान के अंतरिक्ष केंद्र से, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये सब बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक चर्चा जिसकी हम लोगों ने नहीं की थी वो थी चीन ने एक यान छोड़ा है, वह है तियान वेन। ये चीन ने छोड़ा है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखें, और किस देश का यान है आप उसे भी थोड़ा सा याद रख लें, जहन में रख लें, बस बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हो सकता है प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो चीन का जो यान है वो है तियान वेन 1, UAE का जो है वो है अल अमन या होप, और अभी जो अमेरिका ने छोड़ा है वह है परसेवरेंस। चीन ने जो यान छोड़ा था वो 23 जुलाई को, UAE ने छोड़ा था वो 19 जुलाई को, अब जो अमेरिका छोड़ रहा है वो 30 जुलाई को। ये 3 यान छोड़े गए हैं, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, लेकिन ये सब अपने अपने ढंग से, कोई आर्बिटर का पूरी तरह से चक्कर लगाएगा, कोई वहां के चित्र लेगा, कोई वहां पानी बनाने का काम करेगा, कोई तो बकायदे जस लैंडर और रोवर ही लेकर के गए हैं, जो हमारे चंद्रयान के साथ, जो हमारे भी यान के साथ था आपको पता है। तो इस तरीके से उनकी अलग अलग भूमिका है, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है कि लोग मंगल ग्रह की खोज खबर लेने के लिए कितने अधिक बेचैन हैं। तो बस थोड़ी सी जानकारी प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको चाहिए थी। फ्रेंड्स, आपको मैं आज एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बहुत ही अच्छा कमेंट है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर है, क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई बात है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी कुछ परिवर्तन किए गए थे ताकि ये व्यावहारिक हो सके, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि फेवरेबल नहीं है इस योजना के लिए। कुछ राज्यों ने तो पहले से ही अपने आप को इससे अलग कर रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड है। कुछ राज्य अलग करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नाम आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एक तरह से धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ रही है, और यहां तक कि जो बीमा योजना वाली कंपनियां हैं वह भी अब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। इसी एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि पैनल में 18 कंपनियां थी जिनको ये काम सौंपा गया था, तो उसमें केवल अब 10 कंपनियां ही ऐसी हैं जो अभी खरीफ की फसल के लिए जो बीमा चल रहा है उसके तहत काम कर रही है, मतलब वो भी रुचि नहीं ले रही है। ऐसा क्यों है इसके ऊपर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल कमेंट है। तो दोस्तों आप इस कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लीज़ आप उन्हें नोट भी करते जाएं। मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है। ठीक इसी तरह से मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का ही एक और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन अदालत को लेकर के, है ना। आपने देखा है कि कोरोना के समय में कैसे बहुत से जो हमारे न्यायालय यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन सुनवाई कर रही है और बकायदे डिसीजंस भी दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि क्या हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्या इसके जरिए हमारे यहाँ जो न्याय में इतनी देरी हो रही है उसको हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप आंकड़े सुनते हैं कि हमारे जो अदालत है उसमें लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हुए हैं जिसमें से 65,000 तो केवल सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, इसको लेकर के आर्टिकल है। मुझे लगता है कि इसमें भी आपको 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट्स न्यायिक सुधार की दृष्टि से मिलेंगे। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का ही आज एक और आर्टिकल है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आपके सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता है कि विषयों का चयन किया है, वो है कि जो हमारा NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कैसे नए अवसरों की राह खोल सकता है। आपको मालूम है कि जो खासकर जो सड़कों के निर्माण का काम है वो इसके हाथ में है, और किस तरह से सड़कों पर के निर्माण के लिए PPP मॉडल को भी हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वहां भी दुनिया भर की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सारी बातें आपको इसमें जानने और समझने को मिलेंगी, और वो भी समीक्षात्मक स्तर पर। और खासकर इसी के तहत एक कोष बनाया गया है, बुनियादी ढांचा निवेश न्यास, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो कैसे एक नए तरीके से काम करके और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशली सड़क के मामले को लेकर के उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, उसके आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया है। दोस्तों अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना है तो आप मान करके चलिए कि यह सतर्कता आपको बरतनी ही पड़ेगी और बरतनी ही चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्य विषय के तहत आज का विषय क्या होगा इसके बारे में बकायदे आपने कल्पना कर ली होगी, और जो आपने कल्पना की है वो बिल्कुल सही है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी जो आई है हम लोग उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स आज का अखबार इस शिक्षा नीति के बिंदुओं से भरा हुआ है। कल की अगर दूरदर्शन की न्यूज़ आपने सुनी हो वहाँ भी शिक्षा नीति के बारे में बातें थी और बहुत डिटेल्स में उसमें पॉइंट्स दिए हुए थे। अगर मैं उन्हीं बातों को रिपीट करता हूँ तो उससे कोई बहुत ज़्यादा पर्पज सर्व नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को रखते हुए आइए इधर उधर की बातें भी जो इससे जुड़ी हुई होंगी इसको और ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि पुख्ता करेंगी उनकी चर्चा करूँ। देखिए जो सबसे पहले हमारी जो शिक्षा नीति आई थी आज़ादी के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1968 में आई थी। कोठारी कमीशन का नाम आपने सुना होगा, कोठारी आयोग जो 64 में बनाया गया था और 66 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसमें जो जोर दिया गया था उसका जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जो शिक्षा की अवेलेबिलिटी है वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके एक डिटेल्स पॉइंट्स हैं उसमें हम जाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि हमारे पास तो अब 2020 है। इसके बाद फिर से शिक्षा पर बात होनी शुरू हुई, उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और 1985 में वो बन गई, और 1986 में फिर से एक नई शिक्षा नीति लागू की गई जिसे आप द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। इस शिक्षा नीति के केंद्र में था आधुनिकीकरण, क्योंकि देखिए अब हम कहां पहुंच गए, 85-86 में पहुंच गए हैं, है ना। उस समय कंप्यूटर की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का इस बारे में बहुत आप यूं कह लीजिए उनकी तारीफ की जाती है, विजनरी माना जाता है कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता हो सकती है विकास की दृष्टि से उसको भांप लिया था और उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत कर दी थी। तो उस शिक्षा के माध्यम से एक तरह से उसे आप मजबूत बना सकते थे। तो जो 1986 की जो हमारी नीति रही उसका जो केंद्रीय बिंदु था वो था आधुनिकीकरण। और दोस्तों अब हमारे पास इस सदी की पहली शिक्षा नीति और इस सीरीज की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 2020। बहुत डिटेल्स में इसकी चीजें दी हुई हैं लेकिन इसमें जो एक तरह से क्रांतिकारी बातें हैं आपको उन पर फोकस करना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपके लिए वो ये होगी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो तीन में केवल आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि अब इसमें इंश्योर किया गया है, देखिए कितना हो पाता है, कि शिक्षा पर जो खर्च है वो बढ़ाया जाएगा। अभी हमारे जीडीपी का 4.4% शिक्षा पर खर्च होता है, उसे बढ़ाकर के 6% किया जाएगा। और सच पूछे तो इंटरनेशनल समझौता भी इसको लेकर के है बकायदे, जिसमें भारत भी सिग्नेचरी है हस्ताक्षर किए हैं कि हम शिक्षा पर 6% खर्च करेंगे अपने जीडीपी का, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अब भारतीय शिक्षा को कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न पर भी लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको सुनकर के पता नहीं क्या लगा होगा कि अब जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये जो ब्रांचेज होती हैं इनको खत्म करने की बात कही गई है, इनको खत्म कर देंगे, आपको बिल्कुल फ्री आप स्वतंत्र होंगे कि आप अगर फिजिक्स के साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, आप केमिस्ट्री के साथ आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, इस तरह की आपको आजादी होगी। और मुझे लगता है कि सही नागरिक हम तभी बन सकेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो अब आप जैसे देखिए फर्स्ट ईयर में आप चले जाते हैं तो फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं कोई मतलब नहीं, सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं कोई मतलब नहीं, हाँ फाइनल तब में पास हो जाते हैं तब आप कह सकेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूं, अदरवाइज नहीं कहेंगे कि मैं बीए फर्स्ट ईयर हूं बीए सेकेंड ईयर हूं। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें व्यवस्था की गई जैसे आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो ठीक है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गया, मतलब एक साल अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई की है तो उसकी भी रेस्पेक्ट है, उसकी भी पहचान है कह लीजिए। आप 2 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तो जैसे ही आप कहेंगे कि मेरे पास बीए का डिप्लोमा है तो समझ जाएगा सामने वाला कि 2 साल आपने बीए किया है, और जब आप 3 साल कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत ही प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो इनिशियल स्टेज की जो एजुकेशन होगी 5 साल की वो मातृभाषा में देने की बात कही गई है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने केवल आपके सामने रखे हैं। इस पर अभी बहुत एडिटोरियल आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत इस पर बहस भी होगी, इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, उन पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज आप लोग अखबारों में इसे और भी ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपके सिविल सर्विस से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपके अभी के स्टडी से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आशीष कुमार मिश्र जेएनयू नई दिल्ली से, प्रतिभा राठौर वाराणसी उत्तर प्रदेश से, संदीप सिंह पंजाब से, हेमंत नागर, विवेक ठाकुर, आलोक तिवारी और दीपक छेत्री असम से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।